ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सुदृढ़ होती साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी।
आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत और यूएई के रिश्ते को लेकर, और हमने ये भी देखा है कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है, जिसमें भारत यूएई की मदद करेगा कि वहाँ पर जो एक पेमेंट कार्ड स्कीम है हमारे भारत के रुपे स्कीम के बेसिस पर ही वहाँ पर भी शुरू होगा, और इसमें भारत यूएई की मदद करेगा। और ये एग्रीमेंट हमारे जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी 2 दिन की यात्रा चल रही है यूएई की, कि उसके ड्यूरिंग हुआ है। तो अतुल जी, जब आप ये एग्रीमेंट देखते हैं और भारत और यूएई का जो एक रिश्ता है जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में काफी तेजी पकड़ी है, काफी कोऑपरेशन हुई है, तो इस एग्रीमेंट को आप उस रिश्ते में कहां पर देखते हैं?
सिमरन जी, ये जो आपने बात की है पेमेंट्स वाली, लेकिन पेमेंट्स का मतलब है कि जो हमारा डिजिटल कनेक्शन है रुपए और दिरहम के बीच, जो भी एग्रीमेंट होगा पेमेंट्स के ऊपर, वो एक चीज दर्शाता है कि हमारा जो यूएई के साथ रिश्ता है वो एक अलग लेवल पे जा रहा है। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में इसको देखें तो एक टाइम था जब हमारी ब्लू कॉलर लेबर जाती थी यूएई में, और जब यूएई का राइज हो रहा था तो उसमें बात हो रही है हम 80s की 80s 90s की बात हो रही है। उसके बाद जो हमारा ट्रेड रिलेशन बढ़ना शुरू हुआ, और ट्रेड रिलेशन के बाद जो हमारा क्वालिटी ऑफ पीपल भी जो जाने लगे, व्हाइट कॉलर फोर्स जाने लगी, मैनेजरियल टैलेंट जाने लगा, तो एक तरह से वो रिलेशनशिप आगे बढ़ा, लेकिन उसका एक सीमा थी। अब लेकिन जो रिलेशनशिप आ रहा है जिसमें हम एक न्यू इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, उसमें हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, न्यू इकोनॉमी की जो ट्रांजिशन हो रही है भारत में भी, दुनिया भर में हो रही है, लेकिन भारत उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ कंट्रीज की तरफ, उसमें एक नए लेवल पे कोलैबोरेशन हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, और जो फ्रंटियर एरियाज हैं टेक्नोलॉजी के, चाहे वो स्पेस हो, डिजिटल पेमेंट्स की आपने बात की है, न्यू एनर्जी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो ये एक नई दिशा, एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया है ये रिलेशनशिप, और एक कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल एज के ऊपर पार्टनरशिप कर रहे हैं। हमारा ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा रिलेशन था एनर्जी रिलेशनशिप, जो था हमारा ऑयल का रिलेशनशिप, क्रूड ऑयल आता था यूएई से और वो भारत में प्रोसेस होता था, एक वो एनर्जी सिक्योरिटी की इक्वेशन थी, लेकिन न्यू एनर्जी पे हम जा रहे हैं, सोलार विंड इन दिशाओं में जा रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा नया डायमेंशन आया, जो इकोनॉमी का एक पार्ट है, तो एक तरह से क्वांटम जंप है इमेजिनेशन का, और फ्रैंकली जो रिलेशनशिप का जो कोर है वो बदल रहा है, हम ओल्ड इकोनॉमी से न्यू इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, और इसमें बहुत ही हमारी घनिष्ठ पार्टनरशिप सामने नजर आ रही है, तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक इनिशिएटिव रहा है, और ये फ्रेमवर्क का बना है, इसके आगे बहुत स्कोप है, अगले कई डिकेड्स तक तो एक बहुत फंडामेंटल एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूएई के बीच।
अतुल जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो भारत और यूएई का रिश्ता है हम देखते हैं कि ये बदल रहा है, और जो फ्यूचर है उसमें लगता है कि ये रिश्ता और भी बेहतर होगा और भी मजबूत होगा। हमने ये भी देखा कि आज यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, उन्होंने ये भी कहा कि भारत और यूएई का जो एम है वो ये है कि जो आपसी ट्रेड है उसको 100 बिलियन डॉलर तक लेकर जाए। तो जहां आपने बात की रिन्यूएबल्स की, रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यू इकोनॉमी की बात की, तो हम कह रहे हैं हम टारगेट लगा रहे हैं 100 बिलियन डॉलर यूएई और भारत का, तो ये आपको लगता है एक रियलिस्टिक एम है भारत और यूएई के लिए? बिकॉज हमने ये भी देखा है कि हाल ही में यूएई ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है भारत में इन्वेस्टमेंट्स करने का।
सिमरन जी, 2 चीजें, एक तो ट्रेड तो ऑलरेडी बहुत भारत और यूएई के बीच में तो बूमिंग ट्रेड है ही है, अब आज की मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन 54 बिलियन डॉलर की तरफ तो हम पहुंच ही गए, तो मुझे ये लगता है कि 100 बिलियन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 100 बिलियन का मतलब है जितनी भारत और चीन की ट्रेड होती है उसी स्तर पे भारत और यूएई की ट्रेड हो जाएगी, तो वो चैनल में ट्रेड वाला हमारा चल रहा है वो और आगे बढ़े, उसमें तीव्रता आ सकती है, वो ही बात ट्रेड की। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट, यूएई की इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत उसका स्कोप है जिसमें करने का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आ सकता है, कई बार जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन होती है उसका एक्चुअल ढांचा प्रोजेक्ट्स में जा सकता है, तो जहां पर भारत का आत्मनिर्भर भारत की जो फ्रेमवर्क है उसमें यूएई का बहुत बड़ा योगदान जा सकता है और मार्केट्स में तो खैर फाइनेंस यूएई का जा ही सकता है। तो एक तरह से ट्रेड के अलावा अब जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यूएई भी चाह रहा है कि उसका जो कैपिटल है वो उसमें और वैल्यू एडिशन, और अभी तक में जो एरियाज हैं जहां भी इन्वेस्टमेंट जा सकता है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में बहुत बड़ा उनका योगदान है, जैसे ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब इमर्जिंग इकोनॉमीज है। लेकिन भारत की इमर्जिंग इकोनॉमीज में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत में स्केलेबिलिटी कि आप टेक्नोलॉजी एक साथ डेवलप करते हैं लेकिन उसको कमर्शियलाइज करने के लिए और मोनेटाइज करने के लिए जो स्केलिंग आप इंडिया में हो सकती है वो छोटे देशों में नहीं हो सकती। और फिर इंडिया जो है, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र है वो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स के वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना, तो अलग ही लेवल पे जा सकती है जो इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उससे जाके आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑन द ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपोर्ट्स में, और एक पूरा एक साइकिल शुरू हो सकता है अब आज की एग्रीमेंट के बाद। साथ में एक बात और भी है कि सऊदी अरेबिया और यूएई, ये भारत का जो एक्ट वेस्ट एशिया पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट की हम बात करते हैं लेकिन एक्ट वेस्ट पॉलिसी में भी बहुत तीव्रता आ सकती है अगर दोनों को ये जीसीसी कंट्रीज को हम मिलाएं। उसमें एक बहुत बड़ा ये पहिया है, एक पिलर है यूएई, साथ में भारत और यूएई, यूएस और इजराइल जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है तो उसमें भी यूएई का बहुत बड़ा योगदान है। तो कॉरिडोर्स में भी इन्वेस्टमेंट के एरिया सिर्फ भारत में नहीं, आईएमएफ के पूरे कॉरिडोर में ये बायलेटरल इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इस तरह से। तो एक तरह से बहुत ही बड़ा ढांचा और एम्बिशियस ढांचा बन रहा है सुनील जी। $100 बिलियन तो ट्रेड रही लेकिन इन्वेस्टमेंट, ये ग्रोथ इंजन, ये ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरह से तीव्रता देने के लिए ये इनिशिएटिव जा सकते हैं। इनकी जो पहुंच और डेप्थ है वो बहुत गहरी है और पूरी तरह से गेम चेंजिंग एनवायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसमें ये दो कंट्रीज के साथ साथ और कंट्रीज भी एक क्लस्टर बनेगा एक नए ग्रोथ इंजन का। तो इसको हमको ब्रॉडर पिक्चर में देखना है, सिर्फ बायलैटरल ही नहीं लेकिन एक तरह से रीजनल रिवाइवल इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा अहम कदम लिया गया है।
अतुल जी, जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम इसको एक रीजनल रिवाइवल मानकर चले, और ये जो भारत और यूएई में जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, आज जो आगे बातचीत बढ़ रही है उसके आउटकम्स काफी फार रीचिंग हैं। हमने ये भी देखा है कि यूएई ब्रिक्स का भी एक हिस्सा बन गए हैं। जनवरी 2024 में ये पूरी तरह एक मेंबर होंगे जो एक्सपैंडेड ब्रिक्स है ग्रुपिंग उसके, और जो G20 समिट जिसकी भारत में प्रेसिडेंसी है उसमें स्पेशल गेस्ट के तौर से यूएई इनवाइटेड थे और उनके जो लीडर हैं वो आए हुए थे। तो जैसा आपने बात की कि ये जो एक रिश्ता है ये अब रीजनली बढ़ रहा है, और भारत का जो रिश्ता है गल्फ की जो मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमीज हैं, देश है, उनके साथ भी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये जो रिश्ता है, हम बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि एक जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप रही है और यूएई में जो मोहम्मद बिन जायद की लीडरशिप रही है उसका भी एक इनपुट रहा है इस रिश्ते को इतनी तेजी से बढ़ने के लिए। तो ये जो इनपुट हैं, ये जो हम कहते हैं पर्सनल केमिस्ट्री है लीडर्स की, हाई लेवल विजिट्स हुई है, यूएई का जो इंक्लूजन है, तो स्ट्रेटेजिकली ये कितना ऐड कर रहा है रिश्ते में?
दोनों चीजें हैं, पर्सनल केमिस्ट्री है उसके साथ बहुत बड़ा विजन भी जुड़ा हुआ, और जैसे प्रधानमंत्री ने जकार्ता में कहा था कि अब हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है और जिसमें भारत और यूएई, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, अपने ब्रिक्स की बात की। तो ये जो न्यू जियो इकोनॉमिक तरह से बैलेंस बन रहा है उसमें ये यूएई और जीसीसी कंट्रीज बहुत ही बड़ा योगदान दे रही है, भारत के साथ दे रही है, और साथ में जो हमने देखा है कि दो एक्सिस पे जा रही है, एक तो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो ब्रिक्स के अंदर है और दूसरा हम उसके साथ खींच रहे हैं ग्लोबल साउथ उनकी इकोनॉमीज। तो एक तरह से एक न्यू पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जिसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बना है, एक तरह से वेस्ट ड्राइव करता था ग्लोबल इकोनॉमी, हम देख रहे हैं 1991 के बाद सोवियत यूनियन कलैप्स में एक तरह से वेस्ट ड्रिवन वर्ल्ड थी, कह रहे थे कई लोगों ने कहा था कि एंड ऑफ हिस्ट्री है, इसके बाद और कुछ नहीं है, इसके बाद सोवियत कलैप्स के बाद वेस्ट का ही बोलबाला रहा है। तो वो एक तरह से ऐसे जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उसको तोड़ रहा है उस ढांचे को, नया ढांचा बन जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमी लीडरशिप रोल के प्लेटफॉर्म में पहुंच चुके हैं, अब फाइनल लेन में आ गए हैं और आपकी पार्टनरशिप्स जो है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से टूट के ऐसे देशों के साथ हो रही है जो रिसोर्स रिच हैं, जो एम्बिशियस हैं और जो कोलैबोरेटिव हैं, और हिस्टोरिकल लिंकेजेस भी हमारे सिविलाइजेशनल लिंकेजेस भी बहुत बहुत मजबूत। पूरा रीजन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है और उसमें ब्रिक्स वर्ल्ड एक आएगी, इमर्जिंग इकोनॉमीज, ग्लोबल साउथ और रिसोर्स रिच कंट्रीज जो यहाँ की हैं मिडल ईस्ट। और इसके साथ आप देखेंगे ट्रेड कॉरिडोर्स नए बन रहे हैं, भारत और इजिप्ट के बीच में एक समझौता हुआ है कि स्वेज कैनाल और उसके आसपास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करने का, इजिप्ट उसका पार्ट बना है बहुत बड़ा। आईमैक्स जो है इंटरनेशनल ये जो नया मैरिटाइम कॉरिडोर बना है, इसको बनाना है इसकी, लेकिन एग्रीमेंट साइन हो चुकी है। तो ये नई दुनिया जो बन रही है उसके सारे ये पिलर्स हैं और ड्राइवर्स हैं। तो आप मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो है पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड का के सामने हम उसके एक्चुअल उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, एक विजन से होके एक रियलिटी की तरफ उसको जोड़ा जा रहा है। तो हमें इस नए कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में ही देखना चाहिए और इसमें आज का एग्रीमेंट उसी ब्रॉड पिक्चर में फिट इन हो रहा है। इसके बाद और भी ऐसे एग्रीमेंट्स आए लेकिन ये एक पहल जो हुई है ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। न्यू इकोनॉमिक, नई उड़ान, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स ए न्यू बॉल गेम पूरी तरह से। तो पुराना ढांचा टूट रहा है हमारे सामने और ये उसके एक उदाहरण है। जो
असल जी हमने ये भी देखा है कि यूएई का जो पहला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो भारत के साथ साइन हुआ था और वो फोर्स में आया है मई 2022 से। जैसा आपने भी काफी विस्तार में बताया है कि एक नया इकोनॉमिक ट्रेड कोलैबोरेशन शुरू हुआ है और हम देखते हैं कि यूएई आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। हमने ये भी देखा है जैसे आपने भी बात की कि भारत से बहुत लोग जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, फिर अपने घर पैसे भेजते हैं जिनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं और हमारे कल्चरल लिंक्स हैं यूएई के साथ। तो जैसा आपने बात की कि एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो अतुल जी क्या हम ये लगाकर चलें कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और वर्ल्ड ऑर्डर वेस्ट से नॉन वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है तो भारत और यूएई इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के बहुत इम्पोर्टेंट पिलर्स रहेंगे, दोनों आपस में भी और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भी?
जी हाँ सिमरन जी, एग्जैक्टली इसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि विजन बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हम बायलैटरली नहीं अब देख रहे हैं कि हमारा और उनका रिलेशनशिप कैसा है या सिर्फ ट्रेड रिलेशन देख रहे हैं, अब जो विजन का जो फ्रेमवर्क है वो ग्लोबल है कि आप एक नई दुनिया के हिस्से बन रहे हैं और आपका वक्त आ गया, तो बड़े एक्टिवली आपको कोलैबोरेट करना है। ये सोच में बदलाव है और बहुत बड़ी सोच है। तो इसका एक उदाहरण बिल्कुल है भारत और यूएई के बीच में जिस तरह से रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, उसका ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और जैसे आपने बात की जो हमारा ट्रेड और एग्रीमेंट हुआ है यूएई के साथ में, इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी इसी विजन के साथ फाइड है। हमको सिर्फ बायलैटरली नहीं देखना, आपस में तो जोड़ना है लेकिन थर्ड कंट्रीज को ग्लोबल विजन के साथ हमें चाहिए क्योंकि नया वर्ल्ड ऑर्डर हमें लाना है और अब हमारा टाइम आ गया जैसे मैंने पहले कहा। और इसमें हम और भी चीज देखते हैं कि पुरानी दुश्मनियों को छोड़ के अब देखते हैं सऊदी और ईरान के बीच में दीवारें टूट रही हैं। यूएई में ईरानियन पॉपुलेशन काफी है, ईरान जो है ब्रिक्स का पार्ट बन गया है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी, तो नई फॉर्मेशंस आ रही हैं और पुरानी वॉल्स और एनिमिटीज खत्म होके एक कॉमन डेस्टिनी की तरफ ये देश जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव देश। और भारत का विजन भी बहुत बड़ा है, G20 में हमने देखा कि इसके बाद हम ग्लोबल साउथ के एक तरह से वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ आ रहे हैं। तो नई दुनिया का एक बहुत बड़ा स्तंभ भारत है और भारत के साथ ये रिसोर्सेज कंट्रीज, एस्पिरेशनल कंट्रीज ये जुड़ रहे हैं और कल्चरली भी बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल है। मैं रहा हूँ यूएई में कोई 8-9 साल एज ए जर्नलिस्ट, तो वहां पर बिल्कुल ऐसा लगता है होम अवे फ्रॉम होम। तो एक तरह से पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत मजबूत है और एक वो एक नई ठोस लेयर ऐड करती है कि सिर्फ ये आपका ऊपरी इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है लेकिन इसमें हार्ट एंड सोल है इन रिलेशनशिप्स। तो इसीलिए इसकी लॉन्जेविटी और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आता है
और आने वाले दिनों में हम भारत और यूएई के रिश्ते को लेकर और इनके साथ जुड़े और मुद्दों को लेकर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
धन्यवाद सिमरन जी।
अभी आप सुन रहे थे भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सुदृढ़ होती साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।